पढ़ते पढ़ते कितना मेरे को पैसा मिलेगा, पैसा तो कम मिलेगा, नौकरी कैसी मिलती है, क्या होते है क्या मालूम नहीं। उस वक्त टीचर को पगार था 3000 रुपये, मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को 5-6 हज़ार चालू हो जाएगा, इसलिए मैंने पढ़ने का बंद कर दिया। मैं 1994 में दिल्ली में गया था, वो बलराम जाखड़ कृषि मंत्री थे उस टाइम, रामलीला मैदान पे उन्होंने बहुत बड़ा पूरा इंडिया का मेला बनाया था उधर रामलीला मैदान पे। उधर मैंने जो भाषण चालू था, मेरे को हिंदी बोलने को ही नहीं थी, वो समझ पाता था पर बोलने को आता नहीं। मग फिर उसमें मेरे ख्याल में आया कि आपको रसायन डालने की कोई ज़रूरत नहीं, रणदेव आप जो घर पे दवा बनाओ, गाय का गोबर, गोमूत्र, नीम का पत्ता, जो बबूल रहते हैं बबूल का पत्ता, करंज का पत्ता, 12 घंटे के बाद वो ठंड हो जाने के बाद सब पत्ता निकालेगा और जो अंदर का जो दवा निकलेगा ना पानी, वो दवा बहुत अच्छा रहेगा।
तो ये जो सभी किसान भाई ये करते हैं कि आपने उस समय ये एक नया सोचा था?
नहीं, आपने तो सोचा था,
सोचा है
हाँ। किसान जो लगाते हैं ना, एक साल के अंदर निकलते, मैं 3 साल उसको सीढ़ी लगा के माल निकालता था, एक राउंड में एक बार 10 किलो माल निकलता था, 1300 पौधे का माल 10 दिन में 10 टन निकलता था।
तो क्या फायदा क्या होता है?
मग धीरे से मग आपका खर्चा जो है तो खर्चा बचा, मग आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। मग फिर क्या किया हमने, वो स्लरी बनाने की शुरुआत की।
तो ये बहुत बढ़िया, आपने जो एक परिवर्तन ला रहे हैं और एक इतना बड़ा चेंज ला रहे हैं लोगों की सोच में, उनको नई दृष्टि दे रहे हैं, उनको आप अपनी प्राचीन जो पारंपरिक वैदिक कृषि थी उस ओर प्रेरित कर रहे हैं, और इसीलिए हमें लगा कि इस चेंज मेकर में हम आपको अवश्य बुलाएं। आज हमारे इस चेंज मेकर शो पे एक बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही मेहनती और बहुत ही समर्पित एक हमारे किसान भाऊ हैं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से अपने पुरखों की जो ज़मीन थी उसमें उन्होंने खेती करना शुरू किया, और आप सिर्फ वैदिक कृषि ही करते हैं, इनके खेती में इनके कृषि में कोई केमिकल का और किसी भी रासायनिक चीज़ों का प्रयोग ये नहीं करते हैं। तो आज हम जगन्नाथ मगर जी से जानेंगे वैदिक कृषि के बारे में और कितना महत्वपूर्ण है इस तरीके की कृषि करना और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद है। बहुत बहुत स्वागत है मगर जी आपका।
नमस्कार,
धन्यवाद अब आए हमारे स्टूडियो में और इस चेंज मेकर सीरीज़ में। तो हम प्रारंभ करते हैं, पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय अपना दें पहले।
नमस्कार, मेरा नाम जगन्नाथ मगर, मेरा गांव का नाम है निमगांव मगर, तालुका माळशिरस, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र।
और थोड़ा सा बताइए अपनी शुरुआत के जो जीवन के विषय में, कब से खेती आपने शुरू की?
मैंने 1982 में खेती में शुरुआत किया। हमारे पिताजी खेती करते भी नहीं थे, उन्होंने कभी खेत में पावल भी नहीं डाला। 1982 में पढ़ने का बंद किया। हमारे पिताजी ने क्या किया, वो मैं अकेला है, अकेला कोई उतनी खेती की ज़रूरत नहीं, इसलिए आधी खेती बिकी थी, 4 एकड़ 1 लाख में बिकी थी। मेरे सोच में आया कि आप पढ़ते पढ़ते कितना मेरे को पैसा मिलेगा, पैसा तो कम मिलेगा, नौकरी कैसी मिलती है, क्या होते है क्या मालूम नहीं। मग वो खेती उस वक्त मैं जब नौकरी पे लगा, वो मेरे को कितना पगार मिलेगा, उस वक्त वो टीचर को पगार था 3000 रुपये। मग मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को 5-6 हज़ार चालू हो जाएगा, मेरा खर्चा और बाकी का नहीं हो पाएगा। उस टाइम हमारे गांव में 4-5 टीचर थे, बाकी नौकरी में जाने वाले एक भी आदमी नहीं था, वो खेती कर रहे थे सब। और मैंने पढ़ने को बंद कर दिया, एक साल वो आपके घर पे एक गाय और एक भैंस थी, वो लेके जाते थे 6-7 महीना, ऐसा वो खेत में जाएगा, चरेगा, फिर वापस आएगा। फिर दूध उत्पादक का चालू किया 83 में, वो भैंस का दूध और गाय का दूध शुरू किया बिक्री में। उस वक्त दूध का रेट था 1.10 रुपये लीटर, 1.10 रुपये लीटर। हम धीरे धीरे 1 का 2, 2 का 4 ऐसा करके आज मेरे पास 30 गाय है, बकरी, मेंढी, बकरी ऐसे वो 20 है ऐसा। अभी तो बड़ा चल रहा है। फिर मैंने क्या किया, वो जो हमारा जो आधा खेती बंजर थी, वो उसके बाजू में नाले निकाल के उसमें एक कुआ खोदने के बाद, उस टाइम लाइट नहीं थी, इंजन खाता, इंजन लाया। इंजन में क्या, जनवरी से फेब्रुवरी से मई तक पानी पिलाना जरूरत थी, बाकी टाइम वो ऐसा रहता था, मुझे ज़रूरत नहीं लगती थी। वो जो वो बाजू के चर का पानी आता था वो बांध के भेज दिया, को वो सब अच्छा रहेगा। फिर मैंने क्या किया, वो कुएं से उसमें कुआ तैयार करने के बाद वो गन्ना लगाया, वो गन्ने का थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा। फिर मैं 1994 में दिल्ली में गया था, वो बलराम जाखड़ कृषि मंत्री थे उस टाइम, रामलीला मैदान पे उन्होंने बहुत बड़ा पूरा इंडिया का मेला बनाया था उधर रामलीला मैदान पे। उधर मैंने जो भाषण चालू था, मेरे को हिंदी बोलने को आई नहीं थी, वो समझ पाता था पर बोलने को आता नहीं। मग फिर उसमें मेरे ख्याल में आया कि आपको रसायन डालने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने 1995 में हमारे खेत में 8 फुट का पट्टा बना के गन्ना लगाया, उसमें उत्पादन इतना अच्छा निकलेगा। वो 8 फुट में गन्ने में जो अंदर का पट्टा था, उस पट्टे में वो जवार लगाई, 1 एकड़ में 12 क्विंटल अंतर पिक का जवार निकाली, और गन्ना का तो उत्पादन अच्छा निकला। उस टाइम मेरे 8 फुट के पट्टे में, उस टाइम तो 2-2.5 फुट की ऐसी नाली बना के गन्ना लगाते थे, बहुत डाटा बनाते थे। मैंने तो उनका 2 पौधे का अंतर 1 फुट रख के लगाया था, ये वो गन्ना की साइज़ बड़ी हुई। उससे थोड़ा ख्याल में आने के बाद वो अंतर पिक का भी फायदा आपको मिलेगा। अब धीरे धीरे
तो क्या फ़ायदा क्या होता है
अंतर पिक का फायदा, वो मुख्य पिक का जो खर्चा है तो अंतर पिक से मिलता है ना आपको।
अच्छा,
वो उनका खर्चा करने की ज़रूरत नहीं।
तो ये जो सभी किसान भाई ये करते हैं कि आपने उस समय ये एक नया सोचा था?
नहीं, आपने तो सोचा था,
सोचा है
हाँ, तो कौन अभी भी नहीं करते, थोड़ा फार किसान कर रहे हैं, ज़्यादा किसान तो वो नहीं करता। फिर मैंने क्या किया, वो गर्मी के दिन आया फेब्रुवरी मार्च में, वो कुएं का पानी कम हो गया, उस वक्त जो गन्ना है तो गन्ना सूख रहा था। मैंने क्या किया, उस टाइम आपके पास तो अंतर, जो अंतर था दोनों लाइन का बीच में जो अंतर था, वो अंतर में मैंने क्या किया, वो जो गेहूँ का भूसा है ना, वो दूसरे के खेत से लाया और अंदर में वो आच्छादन कर दिया। आच्छादन करने के बाद मेरे को पानी की ज़रूरत लगी नहीं।
अच्छा,
बहुत कम पानी लगा।
ऐसा कैसे हुआ?
वो जो ऊन का जो धूप पड़ जाते हैं तो वो आच्छादन पे पड़ेगा, नीचे का तो गीला रहेगा ना।
अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा,
और फिर क्या होगा, वो आच्छादन का दूसरा एक ऐसा फायदा होगा, वो जो जीवाणु है तो आच्छादन का
मरेंगे नहीं वो।
हाँ, मरेंगे भी नहीं, और नीचे
नमी में
उनका घर अच्छा रहा ना, उनकी सुरक्षितता अच्छा रही। फिर तो गन्ना अच्छा बढ़ गए, तो इसमें छाव पड़ गई, छाव पड़ने के बाद वो जीवाणु बढ़ रहे, वो अच्छा से अच्छा, उसके गन्ने की साइज भी बहुत अच्छी आई। उस वक्त मेरे को 1 एकड़ में 60 टन गन्ना निकला।
और ये भी आपने अपना खुद ही सोचा कि ये कहीं से?
नहीं नहीं, मैंने खुद सोचा।
अच्छा, ये वैदिक कृषि में कैसे आपकी रुचि आई है?
फिर मैंने क्या किया, जो 2000 में मैंने पपीता की, मैं 94-95 में बहुत किसान को बताता था आप तो नैसर्गिक खेती करना है, वो मेरे पास कौन आतेज नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं, अच्छा रहता है। मैं 1995 में वो गन्ने को ड्रिप किया था, हमारे गांव में पहली ड्रिप मैंने की थी, गांव में किसी ने भी नहीं किया था वो वक्त मैंने की, और बाकी का किसान तो तैयार नहीं है, उतना अंतर रखेगा क्या उत्पन्न मिलेगा, ऐसे बोल रहे थे। जिस टाइम वो गन्ना निकल गया, उससे भी ज़्यादा निकालने के बाद वो आदमी खुश हो गई।
तो जैसे आपका 1 एकड़ में 60 टन गन्ना हुआ है, तो और किसानों का कितना टन हुआ होगा?
वो 50-60 होता था। हाँ। वो कैसा उनमें जो खर्चा था, वो 2.5 फुट में एक लाइन, तो मेरी 8 फुट में एक लाइन थी, मग 2 लाइन का जो बीज लग रहा था, वो बीज बचाना आपका। हाँ। उनका बीज का खर्चा होगा, खाद का खर्चा होगा,
केमिकल का खर्चा
होगा, और मेहनत का खर्चा, काम करने का खर्चा, वो बढ़ गया ना, आपका तो नहीं, आपका जो खर्चा होता वो अंतर पीछे निकाला ना।
हाँ।
वो 12 क्विंटल उस वक्त ज्वारी 300-400 रुपए क्विंटल थी।
हाँ।
उस टाइम 5000 का अंतर पीक निकाला। फिर धीरे धीरे 2001 में मैंने पपीता की, 2 एकड़ पपीता की, वो पपीता को क्या उतनी आई बड़ी, सेटिंग हो चालू हो गया, फूल आए गए, फिर क्या होगा, थोड़ा जो धूप कम हो गई, फिर वो पपीता का जो पत्ता रहता है ना, वो पत्ता पीला ऐसा चुरड़ा मुरड़ा हो रहा, मग मैंने क्या किया, मेरे जो दोस्त थे, कौन BSc अग्री थे, MSc अग्री थे, उसके पास मैं गया, किसी ने पपीता लगाई, हमारे बाजू के गांव पीलियों में एक जागीरदार बहुत आगे से पपीता लगाते थे, उनके देख के मैंने लगाई थी ना, उसको बुलाया मैंने मेरे बगीचे में, वो ऐसा हो रहा है क्या, उन्होंने मेरे को बताया उसका पत्ता भी मत नीचे गिर दो, वो पत्ता लंबा 2 किलोमीटर लंबा लेके उसको जाल दो, और जो पीला पत्ता होता है, वो जो पौधा पीला होता है, वो पौधा निकल के आप आपके खेत से 1-2 किलोमीटर ज़्यादा लंबा लेके उसका वेलीवाट लगाओ। मैं बोला ऐसा हो गया, 1 निकाले 2 निकाले 4 निकाले तो सब बगीचा निकल जाएगी, फिर आपके हाथ में क्या मिलेगा। मैंने क्या किया था पपीता को 1 एकड़ में क्या किया था, मेरा मुख्य पिक था चक्कू लगाना, 30x30 फीट में चक्कू लगाया था, 15x15 फीट में अंतर पिक, चक्कू मुख्य पिक चक्कू था, उसमें 15 फीट में अंतर पिक मौसम्बी थी, और उसके 7x7 फीट में पपीता लगाई थी। 1 एकड़ में 3 फसल मैंने लिया थी, 3 फसल।
अच्छा, ऐसा तीनों फसल अच्छे से हुई फिर भी?
बहुत अच्छा। मैंने एक अभी तो पपीता लगाती है, किसान जो लगाते हैं ना, 1 साल के अंदर निकलते, मैं 3 साल उसको सीढ़ी लगा के माल निकालता था, 1 राउंड में 1 बार 10 किलो माल निकलता था, 600 झाड़ में कितना, अभी एक बगीचे में गए ना मैंने, आज इतना माल निकलेगा, खाली बैठ के देखता था, आज उतना 500 किलो, 1 टन, 700 किलो, मैं 1300 पौधे का माल 10 दिन में 10 टन निकलता था, 1300 पौधों का, इतना पर रेट बहुत कम था, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5। वो पपई का उतना पैसा होगा, मैंने 7 एकड़ जमीन लिए वो पपई से, पैसा रेट तो कम था, 56-57 हज़ार रुपये एकड़ से लिए जमीन, वो जमीन ऐसी थी कि उस जमीन में ट्रैक्टर भी नहीं चलता, खाली GCB से खड्डे लाए, उसमें 4 एकड़ वो जो अनार लगाया डालिम, और अंतर पिक पपीता लिया, वो पपीता के उस अंतर पिक से क्या वो खेती लिए ना मैंने, वो खेती का पैसा पूरा तो उन पपीता ने मेरे को दिया 1 साल में, उसमें एक बावड़ी निकाली कुआं निकाला, ड्रिप कर दी, पाइपलाइन कर दी, धीरे 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 वो पूरा खेत मैंने जेसीबी से ऐसे अंदर के पत्थर निकल के बाजूला रख दिया, और जिस जगह पे मिट्टी थी वो ज़्यादा खोल मिट्टी निकलती थी उस जगह की मिट्टी निकाली और वो पत्थर अंदर डाल दी। मैंने 700 ट्रेलर आपके कुएं के पत्थर, दूसरे के दो चार कुएं के पत्थर लेके आया और खेत में नीचे डाल दिया बावड़ी के बाजू में, उससे ऊपर मिट्टी डाल के। वो अभी उसका फायदा मेरा ऐसा होगा कि आपके खेत में जो पानी आपने पानी दिया खेत में, वो पानी जाके उधर में रुकता था पूरा बावड़ी के बाजू में। अप्रैल तक वो हमारे जो कुएं का पानी कम भी नहीं होता, वो एक फुट भी कम नहीं होता था। अभी भी ऐसा चल रहा है, वो खेत में जेब बाजू में जो ऐसा रहता है वो जेसीबी पोकलैंड से निकाले, वो अंदर से वो चार लिए, वो चार में पत्थर डाल दिए, ऊपर से मिट्टी लगाई, वो खेत भी बहुत अच्छा होगा। आज मैंने, आप कभी भी आएगा हमारे खेत में, मैं दिखाएगा इधर पत्थर निकलेगा इतना पत्थर, उधर इतना निकलेगा, उधर इतना निकलेगा, उधर सब जगह पे नीचे पत्थर, जो बारिश का पानी अंदर जाने को बहुत काम बढ़ाया। और मेरे जो कुएं का पानी फरवरी मार्च तक निकलता नहीं, अभी उतना फ़ायदा हो गया। और आपकी खेती का ऐसा एक फ़ायदा होगा, फिर जो आप गो आधारित खेती करना शुरू किया, धीरे धीरे जो गो आधारित खेती, वो पपीता का जो मेरे पास जो आदमी आए वो पौधे निकाले ऐसा बोल दिया उन्होंने, मैंने क्या किया, वो ऐसा किया तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर मैंने क्या किया, रणदेव आप जो घर पे दवा बनाओ, वो जो गाय का गोबर, गोमूत्र, नीम का पत्ता, जो बबूल रहती है बबूल का पत्ता, करंज का पत्ता, वो ऐसे एक 7, 8, 10, 11, 12 जो पत्ते मिलता है आपके पास, जो कांग्रेस गवत रहता है, वो टंटनी का रहता है, वो सब बना के एक जगह में एक बड़े पतीला लिया, वो पतीले में सब पत्ते डाल दिए, उसमें हरी मिर्च डाल दी, लहसुन डाल दिया, हींग डाल दिया, हल्दी डाल दिया, तम्बाकू डाल दिया, वो सब का एक दवा बनाया। वो दवा बनाते हुए कैसा बनाया, वो उसमें पत्ता डाल के पत्ते में गोमूत्र डाल दिया, एक 20-25 लीटर ऐसा गोमूत्र डाल दिया, ऊपर से ढक दिया, वो ढकने के बाद त्या ढक्कन पे वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रखा, जो आपके अंदर से जो वाप निकलते हैं ना, वाप से तो वो दवे का अंश बाहर जाएगा, आपको अच्छा नई दवा मिलेगा, इसलिए ऊपर से ढकता था। वो दो दिन में, मुझे दूसरे दिन 12 घंटे के बाद वो ठंड हो जाने के बाद सब पत्ता निकलेगा, और जो अंदर का जो दवा निकलेगा ना पानी, वो दवा बहुत अच्छा रहेगा।
ये कहाँ सीखा आपने इसका फॉर्मूला, ये दवा बनाने का
फार्मूला? ऐसा सीखा, मेरे बाजू में एक दो किसान थे, मैं वो ऐसे अच्छे थे, जो मैं बोल रहा वो करने को तैयार थे ऐसा होगा। वो तो बहुत गरीब थे, मैंने पपीता लगाई, उन्होंने भी लगाई, दूसरे बाजू वाले ने भी लगाई, तात्या जी आप जो जैसा बोलेगा आप करेगा, जो आपको जानता है का मालूम नहीं, मेरे को वो गाहताल रहता है, वो इतना लंबा पत्ता रहता है, इसके आगे काटा रहता है वो, और जो उनका रस आपके शरीर पे लगाया वो गांधी आती है, वो जो फोड़ करते हैं ना वैसा फोड़ आता है, इतना जो पत्ते का रस जो रहता है ना बहुत कड़वा रस रहता है, और वो गांधी फोड़ आने के बाद आपको ऐसा खाज रहता है, उनके खाज आती है, उनका भी मैंने रस निकाल के स्प्रे किया। धीरे धीरे आप ख्याल में क्या था, जो आपको रसायन डालने की ज़रूरत है, फिर वो पपीता का मेरा जो पत्ता पीला हुआ वो कम हो गया, वो जो ऐसा पान टोपन पान का जो रस शोषक कीड़ी थी वो कीड़ी में भी परिणाम हो गया, पान तो अच्छा रह गया, गर्मी मिलेगी तो पान बहुत अच्छा रहा, और इतना फल लगाया कि वो प्रत्येक पौधे का थिनिंग करना पड़ेगा मेरे को, एक एक जगह दो दो तीन तीन फल आए, और इतना पैसा मिला उनका कि बहुत ज़बरदस्त पैसा मिला। मग धीरे से मग आपका खर्चा जो है तो खर्चा बचा, मग आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मग फिर क्या किया हमने, वो स्लरी बनाने की शुरुआत की, स्लरी बनाई। स्लरी बनाने का बाद इतना रिजल्ट मस्त कि वो फसल ज्वार रहेगा, गन्ना रहेगा, वो मूंगफली, कांदा किया, जो प्याज रहता है ना, प्याज तो बहुत ऐसा ऐसा होगा।
अच्छा
हाँ, और
अच्छा, लेकिन ये जो जो पारंपरिक जो शास्त्र हैं, जैसे कृषि पराशर है,
हाँ,
उसमें भी तो ऐसा वर्णन है ना इस तरीके का बनाने का, स्प्रे कीटाणुओं को मारने के लिए। और
कीटाणु को मारने की जरूरत नहीं लगती,
हाँ,
कीटाणु की जरूरत गंध की लगती,
गंध
मिला तो भाग जाता है कीटाणु। कीटाणु को मारने की जरूरत नहीं। वो जो पत्ता है ना, नीम का पत्ता,
जैसे ये तंबाकू है,
हाँ तंबाकू,
हींग है,
हींग है, हींग का गंध बहुत खराब रहता है ना। हींग जो आप अभी तो देसी गाय का दूध और हींग उनका स्प्रे लिया ना, वो जो इल्ली रहती है ना, इल्ली भाग जाती है, भाग, कौन से भी फसल रहेगा ऐसे आप देखता है ना, वो भागते रुकते नहीं, वो एक बार स्प्रे किया तो। और जो आपके गाय है ना, जो गाय का आधार इतना बहुत है किसान को, जो नैसर्गिक खेती करने वाले किसान को, गाय नहीं तो खेती नहीं होगी।
हाँ, बिना गाय की नहीं हो सकता है,
बिना गाय की खेती नहीं होगी। क्यों? उनके जो पंचगव्य है, गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, घी है, छाछ है, इतना बहुत काम कर रहा है। दूध का काम, आपको कैल्शियम भी फसल को मिलता है, जो आज आप पत्ता पीला हो गया, दुकानदार के वो दवाई के दुकान में गए तो वो बोल रहा है इसमें कैल्शियम कम है, मैग्नीशियम नहीं, जिंक डालना पड़ेगा, वो दूध में बहुत सब सब मिलता है। जो आप हींग डाल के दूध का स्प्रे किया तो पौधे का पत्ता भी अच्छा रहता है, उनकी जाड़ी और रुंदी बढ़ती है।
और क्या हींग से क्या होता क्या है?
हींग से क्या, हींग क्या, वो जो कीड़ा आती है ना, रसोषक कीड़ा आएगी, इल्ली आएगी, वो गंध से आती नहीं, भाग जाती है। आप कौन सी फसल कर रहे हैं, जो आप वेलवर्गीय किया, इसमें मावा रहता है, तुड़तुड़ा रहता है, इल्ली रहती है, जो प्लाट में आप एक एकड़ प्लॉट बनाया, उससे चारी बाजू से आपने एक भिंत लगानी पड़ेगी। कैसी भिंत? जो आपके जानवर को चारा, उससे चारा भी मिलेगा, और बाहर से धूप से हवे हवे में जो कीड़ा आती है ना घूम के वारे से, वो भी वहाँ रखते हैं। फिर क्या हो जाएगा, वो जो गाय है, गाय का पंचगव्य रहता है, पंचगव्य गोमूत्र, तो जो अभी हमारे आजोबा पंजोबा बनाते थे दवा, हम छोटे छोटे थे, जो आपके मिर्च लगाई, बैंगन लगाया, उसमें क्या कीड़ा आएगी, कीड़ा आने के बाद गोमूत्र लेके जाते थे, उस टाइम पंप स्प्रे करने को पंप नहीं थे, वो बकेट में गोमूत्र डालते थे, उसमें पानी डालते थे, वो झाड़ के पत्ता लेते थे और पत्ते से ऐसे छिड़काव करते थे, कीड़ नहीं रहती थी।
अच्छा, गोमूत्र से भी भाग जाता
है? गोमूत्र से भाग, उसका गंध अलग रहता है ना। वो जो छाछ है, छाछ, छाछ जो जितना जूना हो जाएगा, एक साल का छाछ हो गया तो आपको जो बोल रहे हैं ना, बुरशी आती है फसल पे, बुरशी जो आप दुकान से खरीद करते हैं बुरशी नाशक चाहिए, उसका स्प्रे लिया तो बुरशी कम हो जाती है। उसका गंध ऐसा रहता है कि आपके भी आंखों से पानी आता है। फक्त आपने क्या करना चाहिए कि वो व्यवस्थित रखना चाहिए आपके घर में।
एक साल पुराना जूना होगा तो काम करेगा वो।
हाँ, और जो एक साल का जो छाछ है आप मिट्टी में जो ऐसा डाल दिया ना, वो मिट्टी जैसे आपने एसिड डालता है ना, एसिड डालने के बाद ऐसा ऊपर ऊपर आता है, वैसा होता है। इतनी छाछ में ताकत रहती है, दूध में वैसी रहती है। गोबर में तो लक्ष्मीचा वास कहते हैं, लक्ष्मी गोबर में रहती है। वो इतना जीवाणु है कि एक थेम गोबर का डालता है उसमें कोट्यावधि जीवाणु रहते हैं। मग हमने धीरे धीरे वो सब प्रयोग करके चालू किया और हमको पपीता की फसल ऐसी आई कि मैंने पपीता को एक झाड़ को नीचे से एक 3 फुट में एक बाजू में एक फंदे रखी, एक बाजू में एक फंदे रखी, 2 फुट अंतर रखे, वो दोनों बाजू में भी पपीता आए थे। 50-50 एक फंदे में 50 किलो, ये बाजू में 50 किलो ऊपर का चालू था। और सीढ़ी लगाना एक आदमी ऊपर जाके निकालता था। दूसरी साल उसमें चक्कू तो बड़ा होगा, मुख्य पिक था। इस तीसरे साल में तो मौसम भी संतरा का चालू होगा, पैसा ये उतना ऐसा फायदा होगा कि एक मुख्य पीक आपका जो चालू होने के 3-4 साल लगते थे, उस टाइम तक आपका अंतर पीक जो है अंतर पीक से फायदा लिया। और मिट्टी में क्या होगा, जो आप रसायन डालते वो अंदर में जो जीवाणु रहते हैं वो जीवाणु खत्म हो जाता है। वो जो आप कछुओं कहते हैं, कछुओं एक कछुआ आपके हाथ में लिया, एक यूरिया का दाना डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, एक 2 मिनट में खत्म हो जाता है। और आपको 24 तास आप किसान को फायदेमंद है ना, जमीन भूषित करना और जमीन को छिद्र रखता है, बारिश आने के बाद पानी का काम जो है तो आपके मिट्टी में पानी रुकने का, पानी शोषण करने की ताकत बढ़ती है जीवाणु से। जीवाणु नहीं तो पानी शोषण है। अभी ऐसा हो रहा है कि जैसी फरसे ऐसी परिस्थिति आज सब मुझे रसायन डाल के जमीन तो कड़क हो जाएगी, इसमें पानी शोषण प्रक्रिया करने की प्रक्रिया खत्म हो गई और आपका फसल खरपतवार निकालने का प्रॉब्लम आता है। जमीन का जो आप बोल रहे सेंद्रिय कर्ब रहता है, वो कर्ब भी नहीं। आज मिट्टी में आपके मिट्टी में जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट NPK ये कहे फॉस्फोरस गंधक झिंग फेरस सल्फेट वो जो आप बाहर से खरीद करके डालते हैं
हाँ।
उसमें किसान को मालूम नहीं एक बैग माइक्रोन्यूट्रिएंट की 700-1500 रुपये तक है। इसमें एक बैग में कितना रहता है, 200-250 ग्राम। वो 250 ग्राम 1 एकड़ का काम करेगा नहीं करेगा। जो विद्यापीठ आपको क्या बोलता है, एक हेक्टर खेत में वो 40 गाड़ी पूरा डिकम्पोज हुआ खत डालना, वो खत डिकम्पोज करके डालना, वो विद्यापीठ बोल रहे हैं। वो अभी किसान के पास खत कैसा बनाना है वो भी मालूम नहीं। खत का डिकम्पोज आपके घर पे करना पड़ेगा। डिकम्पोज कैसे करते हैं किसान तो गड्ढा लेते हैं, गड्ढे में सब डालते हैं, 1 साल गड्ढे में रहता है, बहुत टेम्परेचर बनता है, उसमें विनाशकारी बुरशी तैयार हो जाती है। जो आपका गोबर रहता है वो ऐसा नीचे से लंबा वो बेड बनाना चाहिए, इसमें वो डिकम्पोज करने का जीवाणु का काम करना चाहिए। अभी तो हमने अभी 3-4 साल होगा हमने जो गोकृपा है बनाया, जो गोकृपा वो गोबर में डाल देता है ना, 2 महीने में आपका जैसा चाह पत्ती रहती है वैसा खत बनता है। कैसा कितना काम बहुत कर रहा है, जो आपको जो आपके घर का खत जो गोबर है खेत में लाने का खर्च कम हो जाता है। जो आप कैसा करता है जो डिकम्पोज नहीं किया तो ज़्यादा ट्रैक्टर का ज़्यादा ट्रैक्टर होगा, डिकम्पोज होगा तो 2 ट्रैक्टर का 1 ट्रैक्टर होगा, वो कम डालेगा तो भी चलेगा।
और अभी जो है ये केमिकल डालने से ये जमीन सब ठोस हो गया है, कड़ा हो गया है,
बहुत कड़क हो गया। वो जैसा पत्थर लगाया वैसा, उससे खरपतवार निकलने के वो जो आप आदमी लगा के खरपतवार निकलने को भी आता नहीं, बहुत ऐसा ठन ठन जमीन कर रहा है। वो इसीलिए आपके मिट्टी में जीवाणु रहेगा ना, खरपतवार पर कम हो जाएगा, धीरे धीरे से कम हो जाएगा। आपने 70 साल खराब करने को 70 साल लगाया, आज किसान क्या बोल रहे हैं, सेंद्रीय खेती 1 साल 2 साल में नहीं बिकती, उसको 5-6 साल लगता है। 5 से 6 साल आप जीवाणु डालता है और फिर ऊपर से रसायन डालता है, जीवाणु अंदर कैसे रहे बचेगी, रसायन डालने के बाद जीवाणु मर जाएगा। और जीवाणु मर जाने के बाद अभी तो क्या आज महाराष्ट्र शासन ने आज चालू किया है, सब किसान के 20-25 किसान का एक गट बनाया, उसकी मिट्टी उसमें जो खत बनाना है वो हरा खत डालने को बहुत शासन खर्च कर रहा है, पर किसान तो गट बना के काम नहीं कर पाए। हमको कैसा चाहिए, अभी आज डालने को कल हमको अच्छा फसल दिखना चाहिए।
दूसरी बात ये भी तो है ना कि वो केमिकल का स्वास्थ्य के ऊपर बहुत खराब,
स्वास्थ्य ऐसा है कि अभी 15-16 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आया, अगले 4-5-6 दिन में टीवी पे बातमी थी, 16 साल का बच्चों को अटैक आ गया। वो ऐसा क्यों हो रहा है, तर अभी आपके घर पे किसान जो आपको खाने को लगता है वो भी रसायन डालता है बहुत। अभी केमिकल से मुक्त होने के लिए आप किसान के पास वो जो आपके देशी जो महाराष्ट्र में खिल्लार है, डांगे है, थरपारकर है, सेवाल है, गिर है, वो जो जो भाग में जो कोकण में गए तो कोकण गिड्डी छोटी है, केरल में गए तो तिप्पुंगनूर है, वो जो देशी है जिस गाय में वसंत है वसिंड और उसको सिंह, वो गाय का किसान को गाय का किसान खाली क्या देखता है, गाय का दूध देखता है, उसका गोबर का विचार नहीं करती थी, अभी बाकी कौन सा विचार नहीं, दूध चाहिए, इसीलिए वो जर्सी का चालू रहा है, एक जर्सी सुबह खाते दोपहर बाहर टाकते। वो देसी गाय का ऐसा है आज खाने के बाद 72 तास उनके पेट में उनका क्रिया चल रही है, 72 तास से उसका गोबर बाहर निकल रहा है, इतना जीवाणु है त्या गोबर में, बहुत जीवाणु है। अभी आता 2-3 साल तक ऐसा होगा कि दवा बनाने की जरूरत नहीं, क्या होता है कम से कम कम दवा से भी आपका अच्छा आता है फसल। मेथी 100 ग्राम, अजवाइन 60 ग्राम और काली मिर्च 40 ग्राम।
काली मिर्च
हाँ,
कि काला जीरा,
काला जीरा,
काला जीरा,
काला जीरा
कितना ग्राम,
40 ग्राम।
अच्छा 100, 60 और 40 है,
100, 60, 40
ऐसे करना है,
इतना बहुत वो बनाए तो 2-3 महीने आपको बहुत हो।
तो क्या 100 ग्राम क्या चीज लेना है,
मेथी,
मेथी 100 ग्राम, 60 ग्राम अजवाइन,
अजवाइन 40 ग्राम काली जीरा,
काली जीरा,
इतना बहुत एक अच्छा काम। मैं आपको थोड़ा है मेरे पास, मैं दे तो कल सुबह मेरे को बताओ कैसा रहता है।
बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छा रिजल्ट है।
कैसे आपके मन में ये प्रेरणा आई, विचार आया कि केमिकल का प्रयोग नहीं करना है, जो भी करना है वो प्राकृतिक चीज़ों से ही खेती करनी है, जो हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा थी जिसको वैदिक कृषि कहते हैं, ये मन में कैसे प्रेरणा आई, कैसे विचार आया और कैसे आपने इसको फिर शुरू किया?
मैंने वो जो दिल्ली में सुना एक व्याख्यान में, ऐसा करना आपका किसान का जो खर्चा कम करना, खर्चा उत्पादन खर्चा कम करके उत्पादन बढ़ाना, मैंने बचपन से देखा था। उस वक्त यूरिया नहीं था, रसायन नहीं था, कौन सा भी रसायन नहीं था, वो मैं जो बच्चा था उस वक्त तो बहुत अच्छा रहता था। वो जो गन्ना आपको खाने को गन्ना लिया ना, वो बहुत लंबा था, 10-20 फीट का ऐसा लगेगा, तो उतनी वो ऊपर का कवर उतना लंबा निकलता था। अभी तो गन्ने के एक कांडी का आधा भी नहीं निकलता, इतना कड़क हो गया है, इतना बहुत मीठा था। अभी उस वक्त शक्कर कम थी, गुड़ था, गुड़ जो आपके घर में ऐसा रखा उसमें जो मूंगी मूंगड़ा लगता था ना, अभी उसमें रसायन नहीं था। वो जो हमने हमारे ख्याल में कैसा आया, आपका खर्चा कम होना चाहिए, उत्पादन बनना चाहिए, इसको मेरे को सिखाने को कौन आदमी नहीं था। मैं आपको खुद प्रयोग करके अभी तो हम अभी एक बार जो गोबर है पका हुआ गोबर, वो डिकम्पोजिंग करके वो गोबर ऐसा ढीक बनाया, उसमें तो एक ड्रम डाल दिया, मिक्स कर दिया, ऊपर से ढक्कन हवा बंद कर दिया 72 घंटे। 72 घंटे में हवा बंद करने के बाद उसमें इतना जीवाणु उत्पादित होता है, बहुत जीवाणु, और जो गोबर है तो पूरा पकता है। उसका जो आप बोलते हैं ना ह्यूमस होना चाहिए, मिट्टी में डालने के बाद मिट्टी से पकड़ लेता है वो, बह के जाता नहीं, बारिश कितना भी बारिश हो तो मिट्टी के साथ ऐसा पकड़ लेता है। और जो आपका कच्चा खाद डालता है, खाद गोबर, वो बारिश आएगा वो हल्का फुल्का होके बह जाता है, आपके खेत में नहीं रहता।
तो आप कैसे करते हैं डिकम्पोज उसको?
आपको आप तो डिकम्पोज हमने पंचगव्य से एक गोप कृपा अमृत गोपाल भाई सुतारी आपने सुनाया, वो जो उन्होंने बनाया 2019 में लॉन्च किया उन्होंने, मैं 2016 तक 16 में मैंने बनाया था घर पे आपके, इतना खुशबू इतना मस्त रहता है उनका। इसमें क्या 2 लीटर छाछ लगता है, 2 किलो गुड़, बस 200 लीटर पानी, और उनका जो लिक्विड रहता है कल्चर 1 लीटर डालना, तो आपका मुफ्त सबको देता है मुफ्त। उसका स्प्रे में भी बहुत अच्छा, मैंने गए साल ओ गोकृपा उसमें गाय का दूध डाल के स्प्रे किया, इतना बहुत रिजल्ट आया। वो गोपाल भाई को हमारे सोलापुर में गोपाल भाई 21 में आए थे, मैंने उसको बताया गोकृपा में दूध डाल के स्प्रे करो, इतना बहुत रिजल्ट है। जानेवारी 24 हम केरल में थे, गोपाल भाई हम एक जगह पे, वो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, उधर आए थे, मेरे को बोले तात्या जी आपने बताया तो बहुत रिजल्ट बहुत अच्छा आया, आप मिल के काम करो, 100 एकड़ महाराष्ट्र में करो, 100 एकड़ हमारे गुजरात में करो, तुम गुजरात में आओ मैं महाराष्ट्र में आओगा। आज महाराष्ट्र में हमारे हजारों किसान काम कर रहे हैं हमारे, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा।
तो क्या क्या उसमें करना है? 2 लीटर लेना है छाछ, हाँ, 2 किलो गुड़,
2 किलो,
200 लीटर पानी,
200 लीटर पानी, और जो जो कल्चर है ना आपके पास, आपके किसी के भी पास है वो कृपा बोल दिया ना वो मिलता है। आपके पास है यूपी में है क्या मालूम नहीं मेरे को, आप लेके गए तो भी चलेगा।
गो कृपा उसमें कितना डालना है?
1 लीटर डालना है। फिर क्या करना है, वो 200 लीटर बनाया, 200 लीटर बनाया और उस पर नीचे 4-5 लीटर रखना, फिर पानी डालना, छाछ गुड़ डालना, ओके 5 दिन लगेगा, उसमें छाव में रखना, और बारिश का पानी भी अंदर जाना नहीं, और जो सूर्य का किरण जाता है ना वो भी जाना मत। क्या वो छाव में रखेगा तो जो आप रोज़ सुबह शाम वो लंबा डंडा लेना और जो घड़ियाल जैसा घूमता है ना वैसा घुमाना, घुमाना भी कैसा घुमाना कि उनका अंदर बहरा होना चाहिए, वो जो जीवाणु है ना, जीवाणु की उत्पत्ति चालू हो रही है, दूसरे दिन तीसरे दिन चालू होती है उत्पत्ति, बढ़ती है उत्पत्ति, वो उत्पत्ति बढ़ाने के बाद उसका विघटन करने के लिए आपको घुमाना पड़ता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसा जीवाणु की संख्या बढ़ती है।
और कितने दिन इसको रखना होता है?
और 4 दिन, 4-5 दिन चालू होता है,
और फिर इसको बस छिड़क देना है। इसको
छिड़कने को 1 एकड़ में 2000 लीटर छोड़ दिया ना, क्या डालने की जरूरत नहीं,
कोई खाद कुछ डालने की जरूरत
क्या जरूरत नहीं, इतना मिट्टी बहुत भुरभुरी होती है। हमने उसको क्या किया, गो कृपा के साथ एक ड्रम थेरी बनाया, एक ड्रम थेरी जगत बारी ऐसा हमने उसको नाम दिया।
यही वाला, यही जो आपने बताया, यही बना
एक ड्रम, एक ड्रम,
एक ड्रम है भाई, इसमें छाछ गुड़
नहीं, नहीं वो गो कृपा,
वो गो कृपा, ये क्या,
ये एक ड्रम, एक ड्रम में यानी क्या,
क्या
एक ड्रम में जो आप मार्केट से माइक्रोन्यूट्रिएंट लाता है, एनपीके क्या लाता है, वो सब जो लाता है, जिंक फेरस सल्फेट मैग्नीज काय जो जो लगता है वो सब इसमें बनाएगा, 3 दिन में 72 घंटे में उसमें तैयार हो जाएगा, वो आपके खेत में जाएगा ना। वो
कैसे तैयार करता है इसको?
उसमें क्या, वो गाय का गोबर 10 किलो,
ठीक है,
और जो आपका मिलेट रहता है ना, मूंग चौली उड़ीद चना हुलगा मटकी, वो है सब 1-5 किलो बनाएगा, ये सब मिलके, और उसका फिसना पिट बनाना, इसमें आपकी मक्का रहती है ना, मक्का, मक्का 1-5 किलो लेना, जो आपकी मूंगफली की खली रहती है खली, वो खली 5 किलो, वो कपास की खली 5 किलो, वो सरकी की खली 5 किलो, और आपका जो देसी गाय है जिस गाय में वसंत है वो गाय का दही 2 लीटर, और 2 लीटर दो तीन डजन जो केले है ना, केले आपकी खाने की, वो पूरी आप जो खाता नहीं ऐसी केली पूरी काली 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 केली, वो 1-2-3 डजन डालना। और वो जो पेड़ के नीचे की मिट्टी 1-2 किलो, और गाय की जो गोबर कंडा है ना, कंडे का भस्म, उसका जाल निकलता है ना, वो मत निकालना। जाल मत निकल के वो जो कंडा बनाएगा उनके जो भस्म रहता है उतना डालेगा तो चलेगा। 1/2 किलो डालेगा तो बहुत होगा। 1 किलो डालने को 50 किलो कंडा जलना पड़ता है, मुझे 1 किलो निकालने को। पर आपका रिजल्ट ऐसा रहता है, और उसमें जो गुड़ वो सेंद्रिय चाहिए, उसमें रसायन मत डालना। जितना गुड़ अच्छा रहेगा इतना रिजल्ट अच्छा रहेगा।
अच्छा मगर भाई, ये तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, लेकिन एक बात ये बताइए कि आजकल के किसान जो हैं, ज़्यादातर किसान भारत में हैं, वो लोग इस दिशा में सोचते ही नहीं हैं, सीधे जाते हैं फर्टिलाइजर खरीदा, केमिकल खरीदा, फॉस्फेट खरीदा।
किसान को क्या हो गया है?
ये आप उन कुछ किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या कैसे आखिर वो इस दिशा में इस तरीके से खेती करना शुरू करें?
मैं किसान भाइयों को, हम अभी तो हर जिले में एक मास्टर ट्रेनर बनाया है।
नहीं नहीं, आप ये बताइए कि अगर कोई किसान देख रहा हो ये वाला आपका वीडियो, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो शुरू करें?
शुरुआत करने की, अभी तो आप शुरुआत कैसे करेंगे?
हाँ, और पहले तो ये बताइए,
पहले से मैं बता दूं।
नहीं, पहले बताइए कि केमिकल की फार्मिंग क्यों नहीं, केमिकल की खेती क्यों नहीं करनी चाहिए?
नहीं, वो जो बताता है वो केमिकल से क्या हो रहा है, आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी खराब होने के बाद फसल भी खराब हो जाती है, और उसका सब का असर आपके शरीर पे, आपके शरीर पे ज़्यादा हो रहा है। अभी तो हरड़ा आ गया, बीपी आ गया, वो लकवा आ गया, पैरलिस हो गया, किडनी खराब हो
गया,
कैंसर आ गया। ये वो 20-25 साल के पहले 100, 120, 5, 10 तक ऐसे आदमी रहते थे, उसके सब अच्छा रहते थे। हमारे पिताजी का दांत मरते समय भी बहुत अच्छे थे, खाना खाते थे, गन्ना सोल के खाते थे। अभी तो 40-50 के बाद वो उसका दांत भी गिर जाता है।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए कि जो किसान अभी इस तरीके की केमिकल्स के प्रयोग करके खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, क्या उनका, उनकी जो ज़मीन है उस पर क्या उसका प्रभाव होगा?
जमीन पर प्रभाव ऐसा होगा, जमीन खट्टा हो गई है। जमीन में वो किसान के क्या हो गया, किसान को मार्केट से पैसा देने से अच्छा लगता है, बैंक से पैसा लेना और किसान वो दुकान के दुकानदार के पैसे लेके जाता है, वो ले उतना ऐसा 2 ml का स्प्रे करने का बताया, वो 4 डालता है। और जो रसायन डालने के बाद जो पत्ता वो जो आपके फसल जो अंगूर निकलता है वो पतला निकलता है, अंगूर पतला निकलने के बाद उसको कीड़ जो है कीड़ अटैक करती है, फिर तो कीड़ मारने के लिए किसान क्या कर रहा है वो रसायन हर दिन रसायन मारना पड़ता है। जो आपने मैंने अभी जो बताया वो आप घर पे बनाया,
अगर कितने साल तक केमिकल कृषि करने से कितने साल में मिट्टी खराब हो जाती है, खेत खराब होते हैं कितने साल?
केमिकल से अभी एक बार केमिकल डाल दिया जो आपके मिट्टी में जो जीवाणु है, एक बार जीवाणु खत्म होने के बाद फिर क्या होगा, जीवाणु खत्म होने के बाद मिट्टी आपकी फसल अच्छा नहीं जाएगी ना।
तो एक बार भी डालने का तो कीटाणु मर जाएंगे,
हाँ, रसायन डालने के
और रसायन की बात है, और फिर उपज भी कम हो जाएगी,
हाँ
है ना,
उपज कमी हो जाएगी,
उपज कमी हो जाएगा।
और उसमें जो जीवाणु काम कर रहे है
हाँ,
वो जीवाणु खत्म होने के बाद तो, कैसा काम करेगा?
तो जैसे जो बिना रसायन के जो प्राकृतिक कृषि से मान लीजिए 1 acre में 100 tons होता था, तो रसायन डालने के बाद 50 tons हो गया, आधा हो गया,
आधा हो गया पूरा देश में। अभी तो हमने देखा वो जो जड़ रहता है गन्ने का जड़, जड़ को हवा नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, जैसा आप जो आपका नाक बंद करने के बाद आपको कैसा लगता है वैसी परिस्थिति मिट्टी की हो गई है। वो जड़ को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो मिट्टी भुरभुरी नहीं है ना, वो मिट्टी तो कड़क हो जाती है। अभी इससे आगे अभी 4-5 साल 2030-35 तक आपको पानी जो पानी है ना, पानी अभी पानी मिलने वाला नहीं, तुम्हारे खेत में नीचे भूगर्भ में पानी शोषने की प्रक्रिया कम हो जाएगी, जिससे मिट्टी कड़क हो जाती है। वो बारिश गिर गया 15-20 mm बारिश गिरने के बाद पानी भाग के जाता है, अंदर शोषने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। 15 mm पाउस होने के बाद 1-2 inch जमीन गीली होती है, ऊपर से पानी जाता है। आपने खुद पानी दिया तो दूसरे तीसरे दिन में जमीन फट जाती है और वो मिट्टी में जो पानी है तो बाष्पीभवन होके जाता है। तो आपको हर 4 दिन में पानी लगता है। हमारे खेत में 2.5 महीने गन्ने को पानी नहीं दिया तो पत्ता नहीं सूख जाता, मिट्टी बहुत।
तो ये अगर मिट्टी जो है वो पानी जब सोखेगी,
आपको इससे आगे काम करना है तो पहला काम आपकी मिट्टी अच्छा बनाना, वो काम करना पड़ेगा।
अच्छा, जिन लोगों ने मगर भाई अपनी जमीनें मिट्टी खराब कर ली है केमिकल के प्रयोग से, वो कैसे ठीक कर सकते हैं वापस?
उसको आप तो ऐसे ठीक करेगा, वो जो हमारा 1 drum थेरी गोकृपा अमृत और आपके पास जो गोबर है, फसल जो फसल करना है, गन्ना करना है, गन्ने में 5-6-7-8 feet का अंतर रखना, जो मुख्य गन्ना है उसमें एक दल गन्ना तो एक दल है, इसमें अंतर पिक द्विदल करना पड़ेगा, उसमें क्या मूंगफली करना पड़ेगा, मूंग करना पड़ेगा, चौली करना पड़ेगा, उड़ीद करना पड़ेगा, चना करना पड़ेगा, मेथी, कोशिंबीर, वो सब कांदा, वो जो प्याज है वो भी लगाएगा तो मिट्टी की ताकत बढ़ती है।
और ये कितना कितना कितने साल लगेंगे मिट्टी को ठीक होने?
मिट्टी में आपने कितने साल, 1 साल में भी हो जाएगा,
1 साल में भी हो जाएगा,
2 साल में भी हो जाएगा, 10 साल किया गया भी हो जाएगा। कैसा होता है, आपने जो प्राकृतिक करना है उसमें रसायन डालने की जरूरत नहीं, फिर आपने प्राकृतिक शुरू किया रसायन डाल दिया तो फिर कम हो जाएगा, फिर 1 साल बढ़ाएगा।
तो मतलब जो आधुनिक खेती है और जो वैदिक खेती है, वैदिक कृषि है जैसे आप लोग करते हैं, इसमें मूल अंतर यही है कि आपकी खेती में कोई भी रसायन नहीं है,
हाँ,
कोई केमिकल नहीं है, हाँ, किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है पूरी खेती में। और ये जो कर रहे हैं खेती, ये इनकी पूरी खेती आश्रित है रसायन के ऊपर।
अभी क्या हो रहा है, हे रसायन से खेतियाँ आपकी खट्टी जो हो रही है, रसायन डाल के जो अंदर का जो मिट्टी में जो जीव जंतु है वो खत्म हो जाता है, वो मिट्टी का काम करना थम रुकता है। ऊपर से जो आप ट्रैक्टर से जुताई करते हैं वो 4 टन 5 टन वो मिट्टी आपकी गीली रहती है, गीली मिट्टी में आप ट्रैक्टर चलाते हैं, उससे भी आप रसायन से भी ज़्यादा काम ट्रैक्टर कर रहा है जवानों मारने का। वो बड़ा ट्रैक्टर डालते हैं, ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं आपके पास। अभी तो बैल नहीं, यंत्र से काम करना पड़ता है। वो मजदूर का प्रॉब्लम पूरा देश में है, पूरा देश में मजदूर का तो प्रॉब्लम है। वो गवर्नमेंट दे रहा है 2 रुपये मुफ्त रेशन दे रहा है, काम करने की जरूरत नहीं मजदूर को। वो किसान को मजदूर नहीं मिलता, मजदूर नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो यंत्र से काम कर रहा है ना किसान, वो उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ता है, रसायन का खर्चा, वो बाकी का जो खर्चा है, वो औषध दवा का खर्चा, मेहनत का खर्चा, वो निकाल के समय उनको हाथ में कर्ज ऊपर आता है, आपको पैसा देना पड़ता है दूसरे को।
तो आप लोग कैसे करते हैं जुताई, कैसे करते हैं?
हम तो जुताई वो तो जो फन है फन से करते हैं।
कितना गहरा करते हैं?
7 इंच 8 इंच
है,
इससे ऊपर नहीं, 6 इंच ऊपर जाता नहीं, हो
नहीं जाता। अच्छा, 6 इंच ऊपर
क्या जरूरत नहीं उसमें। जो आज क्या होगा यहाँ, वो ट्रैक्टर चलने के बाद जमीन की खट्टा हो जाएगी, रसायन डालने के बाद, यूरिया डालने के बाद भी खट्टा हो जाती है। उसमें जो गोबर खत डालना है वो नहीं, किसान का जो गन्ना निकलने के बाद जो पत्ता निकलता है, गन्ने का पत्ता, वो किसान उसको काड़ी लगाता है, वो जरूरत नहीं काड़ी लगाने की, वो उसके खेत में रहना चाहिए। आज तो क्या करा है किसान, आज गन्ना निकलने के बाद दूसरे दिन में जाल देता है सब पिक। अभी तो तुम्हारे यूपी में भी ऐसा चल रहा है ना, वो गेहूं निकलने के बाद काड़ी लगाती है ना।
हाँ हाँ,
वो मत लगाना।
ऐसा क्यों करता है लोग?
उसका जो 1 एकड़ का गन्ना, गन्ना का जो पत्ता गिरेगा खेत में, वो 5 टन आपको खत मिलेगा, 5 टन।
और क्या वैदिक कृषि में और क्या क्या चीजें हैं, और क्या पक्ष हैं इसके, कुछ उसके विषय बताइए। जैसे क्या बीजामृत क्या है, जीवामृत क्या
है? आपके तो पहले आपके आता, आप पहले से शुरुआत कर दो, कैसा शुरुआत कैसा करना है। पहले तो मिट्टी आपकी जुदाई रहती है, वो जुदाई कम करना, वो जो नांगर से पलटी करता है वो बंद करना, वो दातरी से करना, वो जीवाणु के वो जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी को जो भेग गिर जाती है ना, भेग भेग पड़ती है ऐसी, थोड़ी 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 ऐसा अंतर पड़ता है, वो बाष्पीभवन से पानी निकल जाता है। जीवाणु तो 7 इंच में नीचे रहता है, वो तो उसको मॉइस्चर चाहिए मिट्टी में, मॉइस्चर, वो जो धूप पड़ेगी तो ऊपर धूप रहेगी, नीचे को मॉइस्चर रहना चाहिए, वो जीवाणु को स्तुप्तावस्था में रहने को मॉइस्चर है। वो जो आपकी भेग कैसी रहती है, वो मिट्टी पहले आदमी कैसे करते थे, 8 दिन में जो मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने वो भेग बुझाते थे, और एक छोटा बारिक बारिश होगा का वो फसल करने की शुरुआत करते थे। अभी क्या हो रहा है, जमीन को भेग बढ़ रहे, नीचे का बाष्पीभवन से पानी ऊपर जा रहे, वो जमीन खट्टा हो जाती है, वो रसायन का कारण एक, दूसरा कारण आपके पास वो जीवाणु मात्रा मिट्टी में नहीं, वो जीवाणु आप रसायन डालने के बाद जीवाणु खत्म हो जाते, जीवाणु खत्म होने के बाद जमीन खट्टा हो जाएगी, खट्टा हो जाने के बाद वो जो गर्मी मिली का जमीन फट जाती है, फट जाने के बाद जमीन में जो पानी है तो बाष्पीभवन से ऊपर जाता है।
तो सबसे पहले है कि इतनी गहरी जुताई नहीं करनी है।
गहरी जुताई करनी
बस 4-5 इंच का बहुत है,
4-5 इंच बहुत है।
और आप लोग कैसे करते हो, हाथ से कर पाते हो?
ऐसे
मजदूरे करते हैं,
ट्रैक्टर से तो अभी तो किसके पास बैल नहीं, गाय नहीं, जो जानवर किसके पास नहीं, 10 एकड़ जमीन है तो एक भैंस है, वो उनका कितना गोबर मिलेगा?
कहते हैं कि 1 एकड़ के लिए 1 गाय चाहिए होती है,
एक गाय में 10 एकड़ भी करना हो,
10 एकड़ भी कर सकता है,
वो कर सकता है। उससे क्या करना पड़ेगा आपको, जो फसल कर पहले वो दिसंबर जनवरी वो जो फसल आपकी फरवरी में निकलती है, उसके बाद जो एक बार थोड़ी सी जुदाई करनी, जमीन फटने मत देना, जमीन फटने की जरूरत नहीं, जुदाई जल्दी किया तो जमीन फटेगी नहीं, जीवाणु अच्छा रहेगा उसमें। जो आप किसान गोबर क्या करता है, अब मार्च अप्रैल में गोबर खड्डे से निकलता है, खेत में डालता है, वो गोबर में जो जीवाणु है वो भी धूप से खत्म हो जाते हैं। गोबर कभी डालना है, गोबर आपने जो बेड बनाएगा गोबर का डिकम्पोजिंग करना, और बारिश पड़ने के बाद आपके खेत में गोबर जो जैसा आप रसायन डालते हैं वैसा डालना, एक एकड़ में 400 किलो वो जो गोबर पूरा पका हुआ, जैसा जो ह्यूमस बनता है ना, वो जैसा आप यूरिया डालता है ना वैसा डालेगा तो भी चलेगा, इसी ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं, पर उसका उनका पूरा डिकम्पोजन होना चाहिए। और फसल करते समय आपने क्या करना, आपका बीज है तो आपका घर का बीज चाहिए, घर का बीज, वो बीज को बीज प्रक्रिया करनी चाहिए। बीज प्रक्रिया कैसे करनी, आपका थोड़ा गोबर गोमूत्र थोड़ा चुना वो रात को तैयार करना, सुबह आपको कितना बीज है, 5 किलो बीज है, 5 किलो बीज ऐसा जमीन पे रखना, उसमें तो उसको छिड़काव करना, मिक्स करना, पूरा बीज मिला के सूख देना एक आधा घंटा पौ घंटा, बीज को बीज नहीं चिटकेगा, शुरुआत करना पीने को, बहुत अच्छा फसल ऐसे निकलेगा। उसमें आपके पास देसी गाय का जो घी रहता है और देसी गाय का कंडे का भस्म उतना रहेगा, 5 किलो में आपके चिमट में उतना आएगा, उतना भस्म, एक चम्मच घी, वो सब बीज पर डाल दिया और पूरा मिक्स करना, फिस फिस के मिक्स करना, वो पूरा कोटिंग होना चाहिए। कोटिंग होने के बाद जो बीज आपने मिट्टी में डाल दिया उसका जड़ अच्छा से अच्छा निकलेगा, जड़ अच्छा निकलने के बाद ऊपर का जो पत्ता है तो बहुत जाड़ा पत्ता निकलेगा, उसका कलर जैसा आप यूरिया डालता है यूरिया से भी भारी पत्ता निकलेगा, जो पत्ता जाड़ा लंबा रुंदा ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य अच्छा रहेगा, वो उसकी जो ग्रोथ रहेगा तो भी ग्रोथ अच्छा रहेगा।
अच्छा, और क्या करना चाहिए, जैसे बारिश हुई थी हमने
वो जो आपके पास एक एकड़ में 400 kg पूरा डिकम्पोज होने वाला जो गोबर रहता है, गोबर मिट्टी का पत्ते का कैसा ही रहो वो कंपोस्ट खत चाहिए, 500 किलो एक एकड़ में डालना। और पहला बारिश होने के बाद जो एक ड्रम मैंने बताया आपको वो एक ड्रम बनाना, उसको तो वो सब लेना, एक ड्रम में क्या करना, एक ड्रम में जो आपका गोबर गुड़ जो 5-6 कड़ धन्य रहते हैं ना मिलेट के, वो सब के 1-5 किलो लेना, मक्का 1-4-5 किलो लेना, खली लेना, वो
गुड़ लेना,
गुड़ खली, खली आपकी जो मूंगफली की खली, कपास की खली, और देसी गाय का दही 2 लीटर, और 2-3 डजन पूरी खराब होने वाली जो जो केली रहती है ना आप खाता नहीं वैसी केली चाहिए 2-3 डजन, और पेड़ के नीचे की मिट्टी, और गाय के कंडे के जो भस्म रहता है, कंडे का भस्म वो बहुत अच्छा काम करता है, जो आपके मिट्टी में सब जीवाणु का कार्य करता है, वो नत्र का काम भी बहुत बड़ा करता है, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम है, सब जो आप डालते हैं ना वो न्यूट्रिएंट का काम करता है। वो सब क्या करना है, एक ड्रम लेना है 200 लीटर का, उसमें 100 लीटर पानी, पानी जो आप लेता है उससे 100 लीटर गोकृपा लेना, और गोकृपा में वो सब डालना, गोबर ये आपने बताया ना वो सब डालना, वो हिलाना, मिक्स करना, और ऊपर से ढक देना, पतल कपड़े से ढक देना, उसमें बारिश का पानी मत जान देना और धूप भी नहीं जाना, वो 72 घंटे रखना। 72 घंटे के बाद आपका जो आधा हुआ बैलर, 200 लीटर का आधा बैलर होगा ऊपर का रहेगा, उसमें बाकी का गोकृपा डालना, और 200 लीटर एक बैलर पूरा भरना, डंडे से हिलाना, और बकेट में लेके जाएगा, पूरा एक एकड़ में उसका छिड़काव करना। छिड़काव करने के बाद 4-5 दिन में आप जाएगा खेत में तो आपकी मिट्टी सब भुरभुरी दिखाएगी। 5 दिन में इतना जीवाणु का उत्पादन होगा, वो तो नैसर्गिक। आप डालते हैं कैसा, पैसा दे के लेके आते हैं, उसका कृत्रिम रहता है, उसमें ज़्यादा धूप चल नहीं चलती, ज़्यादा बारिश नहीं चलता, उसना जो सूक्ष्म जीव है वो आपके दूरबीन से देखना पड़ता है। आपको कछुआ देख के कछुए से दूसरा जीवाणु कौन सा आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता। कछुआ खाली फक्त आप देखता है उसको,
बिल्कुल सही बात।
बाकी
छोटा होता है,
इतना छोटा है, उसमें ज्यादा पानी दिया तो क्या होगा, मर जाएगा। आप जो पानी में आपका नाक दबा के रखा, आप कितना मिनट जिंदा रहोगा? 1 मिनट 1.5 मिनट। वो तो जो बहुत सूक्ष्म है ना, वो पानी में कितना बचेगा।
बहुत ही आपने एक आंखें खोलने वाली बातें बताई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो दर्शक और जो किसान भाई लोग इसको देख रहे होंगे वो आपकी इन बातों को से बहुत लाभान्वित होंगे और अब वो वैदिक कृषि की तरफ प्रेरित होंगे आने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया, आपने जो एक परिवर्तन ला रहे हैं और एक इतना बड़ा चेंज ला रहे हैं लोगों की सोच में, उनको नई दृष्टि दे रहे हैं, उनको आप अपनी प्राचीन जो पारंपरिक वैदिक कृषि थी उस ओर प्रेरित कर रहे हैं और इसीलिए हमें लगा कि इस चेंज मेकर में हम आपको अवश्य बुलाएं। और मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही इस पूरे भारतवर्ष में इसकी चेतना को प्रसारित करें वैदिक कृषि की तरफ, इसके जो हेल्थ हमारे स्वास्थ्य में जो इसके फायदे हैं, हमारी मिट्टी को कैसे ये सुरक्षित और संरक्षित रख सकती है, इसके बारे में आप ऐसे विस्तार में बताएं जिससे कि एक बहुत स्वस्थ और एक बहुत महान एक भारत का आगे चल के निर्माण हो और लोग इस बात को समझें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग आपकी इस बात को सुनेंगे हमारे इस शो के माध्यम से, वो लोग भी प्रेरित होंगे और वो लोग भी इस वैदिक कृषि की तरफ, जो हमारी पारंपरिक वैदिक काल से जो कृषि की पद्धति है उसको करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार।